आध्यात्मिक उत्कर्ष के सोपान योग और तप गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूजा उपासना का महत्व। देवियों भाइयों,
आध्यात्मिक जीवन में पूजा उपासना का बहुत अधिक महत्व है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर सिद्ध महात्माओं, संतों, ऋषि मुनियों ने इसे अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाया और आत्मोत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ने में सफल रहे हैं। आपने तो पूजा पाठ को मखौल बना रखा है,
दिल लगीबाजी समझ रखा है। मित्रों,
मैंने स्वयं पूजा घटाव पाठ किया है और लाखों लोगों को पूजा घटाव पाठ में लगाया है।
24 साल तक 6-6 घंटे रोज नियमित रूप से मैं पूजा उपासना में बैठता रहा।
अभी भी मेरा समय प्रायः उसी तरीके से व्यतीत होता है। मैं 2 बजे रात में उठता हूँ, जब दुनिया सोया करती है, ठंडक में सिकुड़ी पड़ी रहती है और चैन की बंसी बजाती रहती है, तब मैं अपनी पूजा में 2 से 5 बजे तक बैठा हुआ होता हूँ।
पूजा उपासना अगर बेकार की बात होती है, पूजा अगर निरर्थक होती, पूजा अगर दिल्लगीबाजी रही होती, तो मैं क्यों करता? नहीं मित्रों,
मैंने स्वयं पूजा घटाव पाठ किया है, उपासना किया है।
मित्रों,
मैंने अपने आप को पूजा उपासना में लगाया है और गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर लाखों आदमियों से निवेदन किया है कि आपको पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए।
अभी भी मैं पत्रिकाओं में लेख लिखता रहा हूँ।
बसंत पंचमी से फिर मैं लोगों के भीतर एक नया उत्साह, नया जोश भरने की इच्छा करता हूँ कि जीवन के अंतिम समय में फिर लोगों को उपासना करना सिखा करके चला जाऊँ। उपासना में मेरी अटूट निष्ठा है, फिर मैं आपकी निष्ठा को कम क्यों करूँगा? मुझे भय रहता है कि कहीं पूजा उपासना में आपका विश्वास कम न हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूजा उपासना करें तो विधिपूर्वक करें, नियमपूर्वक करें और क्रमपूर्वक करें। अगर आप मखौल के तरीके से करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप न करें।
मित्रों, इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि आप नास्तिक होने से बच जाएंगे,
क्योंकि जो ख्वाब हमने आपको दिखाए हैं कि उपासना से यह लाभ होना चाहिए, अमुक लाभ होना चाहिए,
जब आपके पास वह लाभ नहीं रहेंगे तो उन कम्युनिस्टों की बनिस्बत आप बड़े बुरे किस्म के नास्तिक हो जाएंगे।
वे सही किस्म के नास्तिक हैं। वे इसलिए नास्तिक हैं कि उनको यह विश्वास नहीं होता कि कोई भगवान भी है क्या।
उनको यह विश्वास नहीं होता कि पूजा उपासना कोई फल दे सकती है क्या। अगर कोई उनको विश्वास दिला दे और उनको यह विश्वास हो जाए कि ईश्वर है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी अपेक्षा वे ज्यादा निष्ठावान हो सकते हैं,
क्योंकि वे अपने विचारों के प्रति ईमानदार हैं और सच्चे हैं और आप अपने विचारों के प्रति बेईमान हैं और झूठे हैं।
कैसे?
आप इसलिए झूठे और नास्तिक हैं क्योंकि आप भगवान के नियम और कानून कायदों को मानना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके लिए दुनिया के नियम और कायदे बदल जाएं, भगवान की व्यवस्थाएं बदल जाएं और आपको कम कीमत पर वो सब अच्छी चीजें मिल जाएं। आप कम कीमत पर अच्छी चीजें मांगते हैं न?
आस्तिकता और नास्तिकता अर्थ समझें।
कम कीमत का क्या मतलब है?
कम कीमत माने भजन।
भजन किसे कहते हैं? बेहद कम कीमत की चीज को, जिसमें न आपको पसीना बहाना पड़ता है, न हथौड़ा चलाना पड़ता है, न हल चलाना पड़ता है, न धूप में खड़े होना पड़ता है और न श्रम करना पड़ता है। बस पालथी मारकर बैठ जाते हैं और हथौड़ा भी नहीं चलाते।
हथौड़ा तो चलाया कीजिए।
नहीं साहब, हम तो माला चलाते हैं। माला में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, माला चलाने में तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
अंगुलियों से लकड़ी का एक एक टुकड़ा घुमाते रहते हैं।
बस इतनी कम कीमत में आप क्या क्या मांगते हैं? मनोकामनाओं की पोथी मांगते हैं, रुपया मांगते हैं, बेटी बेटे मांगते हैं, नौकरी में तरक्की मांगते हैं, स्वर्ग मांगते हैं, शांति मांगते हैं, देवी देवताओं को अपना नौकर बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं और जाने क्या क्या चाहते हैं।
बेटे,
कीमत चुका करके दुनिया में हर चीज पाई गई है और आप बिना कीमत के इतनी लंबी चौड़ी चीजें चाहते हैं, इसलिए हम आपको नास्तिक कहते हैं।
कम्युनिस्ट नास्तिक नहीं हो सकते, क्योंकि वे समझते हैं कि मशक्कत करेंगे तो कुछ पाएंगे, मशक्कत नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे।
और आप बिना मशक्कत के पाना चाहते हैं, इसलिए आप नास्तिक हैं, वे नास्तिक नहीं हैं।
मित्रों,
आपको आस्तिकता की गहराई में जाना पड़ेगा अगर आप उससे कुछ फायदा उठाना चाहते हो। तब अगर आपको खेती में फायदा उठाने का जी है और बगीचे में आपको फायदा उठाने का जी है, तो आपको खेती करने की कला और खेती करने की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। धूप में खड़ा होने के लिए तैयार होना चाहिए, पानी में खड़ा होने के लिए तैयार होना चाहिए, जमीन में लिपटने के लिए तैयार होना चाहिए और सिर पर खाद धोकर ले जाने के लिए तैयार होना चाहिए, समय पर अपने पेड़ पौधों में पानी लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अगर आप फसल चाहते हैं तब रात को जंगली जानवरों से फसल की रखवाली करने के लिए जागने को तैयार हो जाना चाहिए।
नहीं साहब, हम फसल तो चाहते हैं पर मेहनत करना नहीं चाहते।
तो बेटे, फसल नहीं मिल सकती। योग और तप आध्यात्मिक बाग के खाद पानी। मित्रों, आध्यात्मिकता एक फसल है, आध्यात्मिकता एक बगीचा है।
इसमें राम नाम का बीज बोने के तरीके से ही उद्यम किया जाता है। बीज को बोए बिना काम नहीं चल सकता, इस बात को हम सभी जानते हैं। फिर आप बिना बीज बोए किस तरह से फसल पा सकते हैं? बीज बोए बिना आप किस तरह से बगीचा लगा सकते हैं? बीज की कीमत अपनी जगह पर है, परंतु दूसरी चीजों की कीमत उससे कहीं ज्यादा है, जो हमारी उपासना को सार्थक बनाने में समर्थ हो सकती है।
हमारा मन और हमारी उपासना कैसे समर्थ हो सकती है?
बेटे, हमने आपको जप करने की जो विधि बताई थी, पूजा करने की विधि बताई थी, उसमें खाद और पानी लगाया जाना चाहिए।
खाद और पानी क्या है?
खाद और पानी का मतलब है योग और तप।
उसी योग और तप के लिए हमने आपको यहाँ शिविर में बुलाया है।
मित्रों,
अब तक हमने आपको ज्ञान की चार धाराएं बताईं, जिनको जानने के पश्चात आपकी अकल सही हो सकती है और आपके विचार करने के तरीके ठीक हो सकते हैं।
अगर आपके विचार करने के तरीके ठीक हों, तो यह दुनिया बड़ी शांत, बड़ी समुन्नत, बड़ी खुशहाल, बड़ी उन्नतिशील, बड़ी सहयोगी आपको दिखाई पड़ सकती है।
अगर आपके विचार करने के तरीके गलत होंगे, तो यह दुनिया आपको बड़ी खौफनाक, बड़ी डरावनी, खूंखार, बड़ी भयभीत और बड़ी कुरूप मालूम पड़ेगी, अगर आपकी अकल ठिकाने पर नहीं है तब।
दुनिया में आपको जितनी भी विकृतियां दिखाई देती हैं, वास्तव में उतनी है नहीं, जितनी कि आपको दिखाई पड़ रही हैं।
आपको अपने विचारों में जितनी कंगाली छाई हुई दिखाई पड़ती है, वास्तव में आप उतने कंगाल हैं नहीं।
आपको दुनिया जितनी खतरनाक और खौफनाक दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह उतनी नहीं है।
केवल आपकी अकल का फर्क है।
आपकी अकल आपके लिए खौफनाक बना करके सामने आ जाती है और डरा देती है।
मित्रों,
मुझे एक घटना याद है।
इंग्लैंड में जब सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई, तो सबसे पहले यह विचार किया गया कि रानी विक्टोरिया को इसमें सबसे पहले सफर कराया जाए। विक्टोरिया सबसे पहले रेलगाड़ी पर सवार हुई। रानी को उस पर बैठाकर वहां की गवर्नमेंट कुछ दूर तक ले गई। रानी की हिफाजत के लिए, रेलगाड़ी की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड बैठा दिए गए, मिलिट्री बैठा दी गई,
सारे इंतजाम कर दिए गए ताकि कहीं ऐसा न हो कि कोई जोखिम खड़ा हो जाए।
रात को रेलगाड़ी सफर कर रही थी, तो उस वक्त सड़क पर एक बहुत बड़ा हाथी चलता हुआ दिखाई पड़ा। ड्राइवर ने हविसिल बजाई।
उसने देखा कि हाथी सड़क के किनारे किनारे चल रहा है और यह हो सकता है कि कहीं वह गाड़ी को टक्कर न मार दे और गाड़ी को पलट न दे, इसलिए उसका मुकाबला करना चाहिए।
बॉडीगार्ड जो पीछे पीछे चल रहे थे, वे इंजन के पास आ गए।
दूरबीन लगा रखी थी, उससे उन्होंने देखा कि हाथी बराबर चल रहा था। हाथी बड़ा खौफनाक था। उसकी सूंड बड़ी थी और पूंछ भी बड़ी थी। बड़ा मोटा तगड़ा हाथी था। उसे भगाने के लिए उन्होंने स्टिंगन तैयार की और उसमें कारतूस डाले और मोर्चा संभाल लिया।
हाथी पर ढेरों गोलियां चलाई गईं, पर हाथी टस से मज नहीं हुआ।
रेलगाड़ी के सामने वह जैसा का तैसा चल रहा था।
अब क्या करना चाहिए?
गाड़ी को रोका गया कि देखें शायद हाथी चला जाए। हाथी भी खड़ा हो गया। रेलगाड़ी फिर चलने लगी, हाथी भी चलने लगा। रेलगाड़ी को तीव्र गति से भगाया तो हाथी भी जोर जोर से चलने लगा।
अब क्या करना चाहिए?
हाथी बड़ा खौफनाक था, उससे सब डर गए।
अब क्या किया जाना चाहिए? मिलिट्री वालों ने कहा कि यह हाथी ऐसे नहीं जाएगा, यह गाड़ी के आगे आगे चल रहा है, अतः हम लोग उसके पास तक जाएंगे और जबरदस्त गोलीबारी करेंगे।
उन्होंने जमीन पर लेटकर पोजीशन ले ली और धीरे धीरे चलते हुए वहां तक पहुंच गए। हाथी गायब हो गया।
अरे भाई, यह तो कोई भूत है। अब क्या करना चाहिए?
इंक्वायरी की गई कि यह भूत कहां से आता है और क्या है।
बहुत देर तक खोजबीन करने के बाद में मालूम पड़ा कि रेलगाड़ी में जो लाइट लगी हुई थी, उसके शीशे पर बड़ा वाला एक टिड्डा बैठा हुआ था। टिड्डे की छाया रोशनी में से होकर सड़क पर पड़ती थी और वह हाथी मालूम पड़ता था।
हाँ, तो यह टिड्डा था। उस हाथी को गिरफ्तार कर लिया गया।
लाइट के ऊपर जो टिड्डा बैठा था, उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में वह टिड्डा अभी भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है कि यह वह हाथी है जिसने रानी की गाड़ी को 4 घंटे तक डिले किया और जिसको मारने के लिए 400 राउंड कारतूस चलाए गए। लकड़ी के पट्टे पर उसे चिपका दिया गया। इंग्लैंड के शाही म्यूजियम में वह अभी तक रखा हुआ है।
क्या है हमारे जीवन की मुसीबतें?
मित्रों,
आपकी जिंदगी की मुसीबतें क्या हैं?
वह टिड्डा है जो आपको तंग करता रहता है।
नहीं साहब,
गरीबी है, कहाँ है गरीबी?
आप बताइए कि रोटी खाते हैं कि नहीं खाते?
हाँ साहब,
रोटी तो खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, रोटी खा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, यही क्या कम है? ज्यादा के लिए क्या सोचना?
ज्यादा की बात सोचेगा तो चपत पड़ेगी।
इंसान रोटी खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, बस। दौलत सिकंदर ने जमा की, लेकिन वह जहां की तहां पड़ी रह गई। मरते वक्त सिकंदर ने कहा था कि चीजें हमारे साथ दे दीजिए, लोगों ने कहा कि यह चीजें आपके साथ नहीं जा सकती।
सिकंदर खूब रोया।
उसने कहा कि अगर हमको यह मालूम होता कि हम रोटी खाने और कपड़े पहनने की मजबूरी के अलावा कोई और चीज इस दुनिया में छू नहीं सकते, तो हमने अपनी जिंदगी सुकरात के तरीके से बिताई होती, बुद्ध के तरीके से बिताई होती, शानदार आदमियों की तरीके के बिताए होती। अगर हमको यह मालूम होता कि हम सिर्फ दो रोटी खा सकते हैं और कपड़े पहन सकते हैं, दूसरी चीजें जो आपके पास हैं वह आपके साले के लिए हैं, बहनोई के लिए हैं, जमाई के लिए हैं, मौसा के लिए हैं, सबके लिए हैं, गवर्नमेंट के लिए हैं, आप उसे नहीं खा सकते, उसको जितना खा लिया बस उतना काफी है।
अगर यह मालूम होता तो हमने अपनी जिंदगी का तौर तरीका कुछ और बना लिया होता, उसका नक्शा कुछ और बनाया होता, दूसरी प्लानिंग की होती, दूसरे तरीके अख्तियार किए होते।
ये फूहड़ वाले तरीके और कमीने वाले तरीके जिनके लिए हम जीते रहे कभी न अपनाए होते।
मित्रों,
हमने चार दिन तक आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आपकी अक्ल सही हो जाए तो अच्छा है। हमारी अक्ल इतनी अच्छी है कि हम भी 00 फर्स्ट डिवीजन पास हुए, 00 में सेकंड डिवीजन में पास हुए।
हमको नौकरी मिल गई, हम गजेटेड ऑफिसर हो गए।
अब हम ये हैं, वो हैं। कितनी बड़ी अक्ल है, यह कितनी बेहुदा अक्ल और कितनी फूहड़ अक्ल है जो अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते कि जिंदगी किस काम के लिए है और मुझे क्या करना चाहिए। जो लोग हमें मिले हुए थे उनके साथ हमने ऐसा ऐसा व्यवहार किया था कि जैसे कि वे हमारे दुश्मन हो। अगर हमने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया होता तो दुश्मन होने की बजाय वे हमारे दोस्त होते। और जो चीजें हमारे पास हैं जिनको हमने निकम्मा मान लिया, उनके बारे में हमारा यह ख्याल हुआ होता कि जो चीजें मिली हुई हैं वह इतनी ज्यादा हैं कि अगर हम इनको इस्तेमाल कर सके तो जिंदगी में मजा आ जाए।
मित्रों,
जो चीजें हमें मिली हुई हैं उनका इस्तेमाल करना हमको नहीं आता। हमको जो शरीर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करना हमको नहीं आता।
हमने उसको तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया, सब एक्सीडेंट कर दिया,
नस नाड़ियों का एक्सीडेंट कर दिया। फिर कहते हैं कि हमारी जिंदगी बढ़ा दीजिए। जिंदगी बढ़ा करके आप क्या करेंगे?
मित्रों, हमको अक्ल मिली हुई थी,
इतनी शानदार अक्ल कि यदि हमने उसका फायदा अपने लिए उठाया होता, घरवालों के लिए उठाया होता, तो विनोबा भावे की माँ के तरीके से हमने बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया होता और अजर अमर बना दिया होता। विनोबा की माँ ने अपने तीनों बेटों से कहा कि बेटो,
तुमको ब्रह्मचारी होकर के रहना चाहिए, तुमको ब्रह्मज्ञानी होकर के रहना चाहिए। माता का हुक्म मानकर तीनों बच्चे ब्रह्मज्ञानी होकर जिए। उनमें से एक का नाम विनोबा, एक का नाम बालकोबा और एक का नाम विठोबा था।
तीनों के तीनों अजर अमर हैं और जब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा, गांधी जी के बाद दूसरे किसी और आदमी का नाम लिया जाता रहेगा तो विनोबा का नाम लिया जाता रहेगा। एक आपकी माँ जो हमेशा सिखाती रहती है कि बड़े बच्चे का ब्याह हुआ पर उसके बेटे बेटी नहीं होते,
अतः उसे दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। मित्रों,
हमको जो मिला हुआ था अगर उसका ठीक तरह से उपयोग करना हमको आ गया होता तो मजा आ जाता, हमारी जिंदगी में हंसी खुशी आ जाती,
हमारी जिंदगी में स्वर्ग आ जाता,
हमारी जिंदगी में शांति आ जाती और हम इसी जिंदगी में महापुरुष हो जाते।
अगर हमारी जिंदगी में हमारी अक्ल साथ देने में समर्थ हो जाती तो मजा आ जाता। सद्बुद्धि पाने का महामंत्र। मित्रों,
मैं कहता रहता हूँ कि अक्ल को ठीक करने का काम गायत्री महामंत्र करता है। गायत्री मंत्र कोई जादू का मंत्र नहीं है। अगर जादू का मंत्र है तो सिर्फ इस मायने में है कि उसकी प्रेरणाएं, उसकी दिशाएं हैं, उसकी शिक्षाएं हैं जो आदमी की अक्ल को सही बनाने में मदद करती हैं और यह कहती हैं कि अपने सोचने के तरीके को सही कीजिए। चीजों को पाने की अपेक्षा, चीजों को इकट्ठा करने की अपेक्षा, चीजों को बढ़ाने की अपेक्षा यह सीखिए कि हमारे पास जो चीजें हैं उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। कम चीजों में भी आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा चीजें होते हुए भी आप परेशानी में पड़े रह सकते हैं, हैरानी में पड़े रह सकते हैं।
मित्रों,
यह था विचारों का जादू जिसको हम अध्यात्म कहते हैं और जिसको चार दिनों तक मैं आपको समझाता रहा, सिखाता रहा।
आज मैं आपको एक और बात सिखाता हूँ।
अगर आपको भगवान की अथवा दैवीय शक्तियों की सहायता की जरूरत हो तो आपको यह जानना चाहिए कि देवता आखिर क्या हो सकते हैं। और दैवीय शक्तियाँ क्या हो सकती हैं?
दैवीय शक्तियाँ, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, ये देवी देवता कोई व्यक्ति नहीं है।
नहीं साहब, देवी होती है और शेर पर बैठी रहती है। हाँ बेटे, यह शेर पर बैठी रहती है।
शेर अर्थात बहादुर, हिम्मत वाले आदमी, जिनके ऊपर दैवीय शक्तियाँ सवारी करती हैं।
जो आदमी हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं, दिल वाले हैं, कलेजे वाले हैं, उन पर देवी सवार होती है। इसका मतलब यही होता है। नहीं महाराज जी, वह देवी तो शेर पर बैठी रहती है। चल उल्लू कहीं का, देवी शेर पर बैठी रहती और घूमती रहती हैं। बेकार की बातें, पागलों जैसी बातें, बेबुनियाद की बातें, बेसिलसिले की बातें, बेटान पूंछ की बातों में तू कहां से कहां भटकता रहता है।
वास्तविकता को समझता है नहीं, यहां वहां मारा मारा फिरता है और अज्ञान को अध्यात्म कहता है। अज्ञानी न बने मित्रों।
अज्ञान और अध्यात्म में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने देवी देवता के नाम पर जिस प्रकार अज्ञान हावी हो गया, वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है। हमारे गुणों के नाम ही देवी देवता हैं। वे हमारे पास जितने होते हैं, उसी हिसाब से दैवीय शक्तियां हमारे पास आ जाती हैं। कई सिद्धियां हमारे पास आ जाती हैं और कई चमत्कार हमारे पास आ जाते हैं,
और हम उतने ही उन्नतिशील होते चले जाते हैं।
इन बातों को आप समझते नहीं हैं और देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं, पागल कहीं के।
मित्रों,
हमने अपनी समझदारी के लिए चुनौती दी है। अब हम यह कहते हैं कि राम का नाम जादू है।
इस जादू का फल प्राप्त करने के लिए आपको उसके लिए सिंचाई का इंतजाम करना चाहिए, खाद का इंतजाम करना चाहिए।
राम का नाम जिस खाद और पानी से सींचा जाता है, उसका नाम है योग और तप। छोटे बच्चों को हम छोटी छोटी बातें बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं?
भगवान जी पर चावल चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना, धूपबत्ती चढ़ा देना। अच्छा गुरुजी चढ़ा देंगे।
अच्छा और क्या चढ़ा देना?
महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए बेल के पत्ते चढ़ा देना।
बच्चों के लिए इतना ही काफी है। कितने का सामान हो गया?
एक दो पैसे का सामान हो गया। दो पैसे खर्च करने के बाद फिर हमने यह कहा कि 15 मिनट माला घुमा देना, ओम नमः शिवाय की माला घुमा देना।
यह भी आपने कर लिया। यह हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए खेल तमाशे तैयार करके रखे थे, ताकि बड़े होने पर आपकी मदद कर सकें और वास्तविकता की बात सिखा सकें। बच्चों का खेल नहीं अध्यात्म।
मित्रों,
बच्चों को हम छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं।
बेबी,
तू क्या कर रही है?
आज तो मैं शादी ब्याह कर रही हूँ, दावत बना रही हूँ।
दावत में कितना पैसा खर्च होता है, यह भी नहीं मालूम।
मैं तो दावत बनाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी, कचौड़ियाँ बनाऊंगी। कैसे बनाएगी? आटे की गोलियां बना करके लाई। देखो पापा,
यह लड्डू है, यह जलेबी है।
मैं चूल्हा बनाकर लाई हूँ, आप कड़ाही ला देना। अच्छा ला देंगे। 2 रुपये का एक डिब्बा ले आए, उसमें चूल्हा, कड़ाही, चम्मच, चक्की, बर्तन सब कुछ है।
यह देखकर वह खुश हो रही है।
सामने एक कपड़ा टांग दिया।
यह हमारा घर है, यहाँ पर हमारे गुड्डे गुड़ियों का ब्याह हो रहा है।
मिठाई बन रही है,
हमारी दावत बन रही है।
बेटी भी खुश, पापा मम्मी तीनों खुश।
इस तरह 4 इंच की चौकी पर चौंसा चल रही है। आप चौकी पर क्या कर रहे हैं?
तरह तरह की मूर्तियाँ, 4 आने के हनुमान जी, 6 आने के गणेश जी, 11 आने के रामचंद्र जी, 2.5 आने की लक्ष्मी जी सजा रखे हैं।
ये क्या कर रहे हैं आप? गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं। तो क्या इसी में से मिलेंगे चमत्कार? नहीं बेटे, इसमें से चमत्कार नहीं मिलेंगे। चमत्कारों के लिए बड़ा वाला बगीचा बनाना पड़ेगा, बड़ा काम करना पड़ेगा। अभी बेटे आप क्या करना चाहते हैं? दावत करना चाहते हैं, छोटी बेबी की तरह जो कहती है कि हम 2 पैसे दावत करेंगे और ब्याह करेंगे।
बेटी,
2 पैसे में कहीं ब्याह होता है?
हाँ पिताजी।
1 पैसा दहेज में देंगे और 1 पैसा दूल्हा दुल्हन को देंगे। बेटी, 2 पैसे में ब्याह नहीं होता, 2000 रुपये से कम में ब्याह नहीं होते।
नहीं पापा, हम तो 2 पैसे में कर लेंगे।
बेटी अपने बालपन से समझाने की कोशिश करती है। इससे कुछ मिल सकता है क्या?
नहीं मिल सकता है तो किससे मिल सकता है?
क्या अध्यात्म से कुछ नहीं मिल सकता?
मिल सकता है बेटे। हमने अपनी इतनी लंबी जिंदगी लोगों के लिए सिर्फ इसलिए जियाई कि हम लोगों को यह समझा सकने में समर्थ हो सके कि अध्यात्म अगर सही ढंग से जीवन में काम में लाया गया हो, तो वह सब कुछ मिल सकता है जिसके महात्म्य से शास्त्र भरे पड़े हैं। हमारे जीवन से कुछ सीखें
मित्रों,
उसके सबूत और गवाही के रूप में हमारी जिंदगी है।
66 वर्ष की हमारी जिंदगी के 66 वर्ष के पन्नों को पढ़कर देखिए कि क्या अध्यात्म मनुष्य के जीवन को सामर्थ्यवान बना सकता है, क्या आदमी को क्षमता संपन्न बना सकता है,
क्या आदमी अपनी मुसीबतों को दूर कर सकता है,
क्या वह अपनी मुसीबतों के अलावा दूसरों की मुसीबतें दूर कर सकता है?
यह बहुत विस्तृत है बेटे, हम इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते।
आप हमारी पुस्तक पढ़ लेना।
आप हमारी जिंदगी के हर पन्ने को पढ़ते हुए चले जाइए और देखते हुए चले जाइए कि जो मनुष्य अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य से पूरा नहीं कर सकता, वह भगवान की सहायता से, मंत्र की सहायता से, उपासना की सहायता से कर सकता है कि नहीं।
मित्रों,
आप हमारी जिंदगी के पन्ने पढ़ते हुए चले जाइए और यह देखते हुए चले जाइए कि जब से हम पैदा हुए हैं, तब से लेकर अब तक हमने क्या किया है।
आप हमारे ज्ञान को पढ़िए, हमारी विद्या को पढ़िए।
हमने दूसरों की मदद की है, उसको पढ़िए।
हमने स्वयं उन्नति प्राप्त की है, उसको पढ़िए। आप हमारे यश को पढ़िए, हमारे वर्चस्व को पढ़िए, हमारे ऊपर देवी देवताओं की जो कृपा है उसको पढ़िए, हमारे ऊपर संत और महापुरुषों का और सिद्ध पुरुषों का जो अनुग्रह है उसको पढ़िए।
नहीं महाराज जी,
आपने जो माला घुमाई थी हम भी घुमाएंगे।
बेटे, माला से बाहर निकल और ले जा अपनी माला। माला तो एक सहारा है, लाठी है जिसने काफी मदद की है। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि लाठी के सहारे हमने हिमालय की चढ़ाई की है। यह ठीक है कि लाठी हमारी मदद में काम आए, लेकिन असल में लाठी ने चढ़ाई नहीं की।
चढ़ाई की है तो हमारी टांगों ने।
नहीं साहब, आप तो कह रहे थे कि लाठी बड़ी मददगार है।
लाठी ने हमारी सहायता की है और लाठी के सहारे हम हिमालय तक गए थे, लाठी के सहारे चढ़े थे, लेकिन बेटे टांगों के बिना नहीं।
नहीं साहब, टांगों की जरूरत क्या है,
लाठी से हम चढ़ लेंगे। नहीं बेटे, टांगे होनी चाहिए, तप और त्याग के बिना कैसा अध्यात्म।
मित्रों, आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए पूजा और पाठ काफी नहीं है,
उसके लिए तप और योग होना चाहिए।
योग किसे कहते हैं और तप किसे कहते हैं? चलिए, हमें इसे आपको समझाना चाहिए और यह समझाना चाहिए कि क्रिया जो शरीर से संबंधित की जाती है, यहाँ तक अध्यात्म की शुरुआत भी की जा सकती है,
लेकिन यहाँ अध्यात्म पूर्ण नहीं हो सकता। किससे?
शारीरिक क्रियाओं से। शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी से जो क्रियाएं की जा सकती हैं वे सब भौतिक हैं और उनका कोई परिणाम अगर मिल सकता है तो वह भौतिक परिणाम दे सकता है। हम शरीर से मशक्कत करेंगे, हथौड़ा चलाएंगे, कुदाल चलाएंगे, मिट्टी खोदेंगे तो हमको मिट्टी की चीज मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, अनाज मिल सकता है, बस इसके आगे कोई चीज नहीं मिल सकती। लोगों को न जाने क्यों यह ख्याल जम गया है कि शारीरिक क्रियाओं का नाम ही शायद अध्यात्म होगा।
मित्रों,
योग की व्याख्या करते हुए मैंने लोगों को देखा है कि टांग उल्टी कर दी और सिर नीचा कर दिया। क्या करते हो? योगा कर रहे हैं।
अरे बाबा,
इस योग में यह क्या हुआ?
वह योग तो शरीर का हुआ,
शरीर को उल्टा कर रहा है। इससे क्या फायदा हो सकता है? इससे शरीर में कोई कमी होगी, कमजोरी होगी तो शायद ठीक हो सकती है। यह योग कैसे हो सकता है? यह तो शरीर की क्रिया है। भगवान शरीर नहीं है, शक्ति नहीं है, जप नहीं है। भगवान चेतन है और हमारी जीवात्मा चेतन है।
चेतना को चेतन से मिलाने के लिए अगर कोई क्रिया की जा सकती होगी तो वह संवेदनात्मक होगी, भावनात्मक होगी, विचारणात्मक होगी, वह शारीरिक नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि शारीरिक क्रिया हमारी मदद कर सकती है, लेकिन अगर वह विशुद्ध शारीरिक क्रिया है तो उसका फायदा शारीरिक होना चाहिए। मित्रों,
जप क्या है? जीभ की नोक से किया हुआ जप विशुद्ध शारीरिक क्रिया है।
तीर्थों की परिक्रमा शारीरिक क्रिया है।
गंगा स्नान शारीरिक क्रिया है।
एकादशी का उपवास शारीरिक क्रिया है।
शारीरिक क्रियाओं के जो फायदे हो सकते हैं वे शारीरिक हो सकते हैं, सांसारिक हो सकते हैं,
वे आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक लाभ कैसे हो सकता है? भगवान तक हमारी कौन सी बात पहुंच सकती है? वह केवल विचारणात्मक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है। इस सिद्धांत को आप जान लीजिए। योग माने भगवान से मिलन।
मित्रों, योग क्या हो सकता है?
योग तो गुरुजी, उसे कहते हैं नीति, धैति, वस्ति आदि को। अच्छा बेटे, यह तो बताओ कि योग का अर्थ है भगवान से मिल जाना।
अच्छा, यह बताओ कि तू योग कब से कर रहा है?
गुरुजी,
मैं तो बहुत दिन से योग कर रहा हूँ। कैसे कैसे करता है?
गुरुजी,
मेरे को तो यह बताया गया था कि नाक में भीतर तक एक रस्सी डाल लो, वह अंदर तक चली जाती है और फिर उसे बाहर खींच लेते हैं। जब तू नाक में से रस्सी खींचता है तो फिर तुझे भगवान दिखाई देता है, उसमें से भगवान मिल जाता है।
अरे महाराज जी, भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा बेटे,
योग के नाम पर और क्या करता है?
गुरुजी,
योग के नाम पर एक स्वामी जी ने बताया था कि कपड़े की रस्सी खा जाया कर, उसे पेट में ले जाया कर और फिर निकाल लिया कर,
उसमें से बेटे भगवान साथ साथ चला आएगा। नहीं, मांस जैसा गीला गीला पदार्थ निकलता चला जाता है।
और क्या बताया था स्वामी जी ने?
महाराज जी, यह बताया था कि वस्ति क्रिया करना। वस्ति क्रिया क्या होती है?
टट्टी के रास्ते पानी पी जाते हैं और फिर उसी रास्ते से पानी निकाल देते हैं, इसको वस्ति कहते हैं।
तो बेटे, वस्ति क्रिया से भगवान जरूर मिल गया होगा?
नहीं महाराज जी,
नहीं मिला। तो क्या फायदा इस योगा से? मित्रों, योग शारीरिक नहीं हो सकता।
शारीरिक क्रिया एवं योग की दिशा में जरूर मदद कर सकती हैं, यह मैं मान सकता हूँ। शारीरिक क्रियाओं से हमारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो सकते हैं, जिससे योग के रास्ते पर चलने पर हमारे पांव मजबूत हो सकें। इसमें कोई शक नहीं।
असल में योग मानसिक होना चाहिए और भावनात्मक होना चाहिए।
योग क्या है?
योग बेटे,
दो चीजों को मिला देने को कहते हैं।
योग मीन्स जोड़ना, जोड़ माने योग, फिर किसका किससे जोड़? परमात्मा के साथ आत्मा का जोड़,
इसको हम योग कहते हैं। आत्मा परमात्मा के साथ जिस सहारे से, जिस सिद्धांत के सहारे, जिस क्रिया के सहारे, जिस भावना, जिस चाहत के सहारे मिल सकता है, उसको हम योग कह सकते हैं।
योग भावनात्मक हो सकता है, विचार परक हो सकता है, नम्रता परक हो सकता है, निष्ठा परक हो सकता है,
बस इससे आगे नहीं।
यह शारीरिक नहीं हो सकता।
शारीरिक से मदद मिल सकती है। याद रखना, यह योग नहीं जो शरीर से किए जाते हैं।
प्रभु समर्पण से सद्धता है योग।
योग किस तरीके से हो सकता है? योग अपने आप को जीवन में मिला देने का नाम है।
जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ,
पानी की एक छोटी सी बूंद कहीं समुद्र में मिल गई, शामिल हो गई। अब बूंद बूंद नहीं है,
अब वह समुद्र है।
समुद्र में तलाश कीजिए, अब वह बूंद नहीं मिल सकती, वह समुद्र बन गई है। बूंद की हैसियत एक पैसे की भी नहीं थी, अब लाखों करोड़ों की है।
इसका नाम क्या हो गया? योग। इसी तरह एक नाला था,
बहता हुआ चला आ रहा था। नाला बहते बहते गिरकर गंगा जी में शामिल हो गया। गंगा जी में मिलने के बाद में नाले का पानी गंगा जल हो गया। लोग इसी नाले के पानी को थोड़ी दूर जा करके भर कर ले गए और किसी को वही गंगा जल दिया और उसका उद्धार हो गया। वह नाला जिसे अपनी स्वयं की हस्ती का पता नहीं, अब वह नाला नहीं रहा।
आप उस नाले को ढूंढ कर लाइए।
कहाँ से लाएंगे? अब वह गंगाजल में शामिल हो गया और नाला गायब हो गया। नाला खत्म हो गया और गंगा बन गया।
मित्रों,
बूंद खत्म हो जाती है तो समुद्र बन जाती है, और जब इंसान अपने आप को खत्म कर देता है तो भगवान बन जाता है। इंसान और भगवान के बीच जो सबसे बड़ी दीवार है वह क्या हो सकती है? आप जानते हैं, एक ही दीवार है और उसका नाम है कलुष और कषाय। कषाय, कलमश या कलुष किसे कहते हैं? हमारी शारीरिक जरूरतें और मानसिक जरूरतें हैं, और दोनों के बीच की दूरी अहम, मैं, है। नवरात्रि के दिनों में देवी को क्या चढ़ाते हैं? मैं को चढ़ाते हैं। और मियाँ जी बकरीद के दिन क्या खाते हैं?
उसी को खाते हैं, मैं को खाते हैं।
बेटे, बकरा तो भगवान का प्राणी है। कुत्ता मार डालेगा तो क्या, बकरा मार डालेगा तो क्या, बंदर मार डालेगा तो क्या? क्या भगवान जानवरों को खाता है?
भगवान खाता है मैं को, अहम को।
हमारा अहम इतना ज्यादा है कि इसमें लोभ, मोह, वासनाएं, तृष्णाएं इस कदर बढ़ती चली जाती हैं कि मैं के आगे सब कुछ स्वाहा होता चला जाता है।
मैं कहता है कि किसी का माल मिल जाए तो उसी को खाता हुआ चला जाऊं, बढ़ता हुआ चला जाऊं, मालदार होता हुआ चला जाऊं, संपन्ना होता हुआ चला जाऊं, पदवीधारी होता हुआ चला जाऊं।
यह मैं जितना ज्यादा तीव्र होता हुआ चला जाता है, उतने ही ज्यादा असंख्य प्रकार के नैतिक और अनैतिक कार्य कराता है।
मित्रों,
डाकू से लेकर चोर उचक्कों तक, ज्ञानी से लेकर दुष्ट दुराचारियों तक एक ही बात पाई जाती है कि उनका मैं इतना सीमित होता है, इतना बड़ा हुआ होता है कि वह चाहता है कि जितना जल्दी पैसा मिल सके और जहां से भी मिल सके हमको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमको नीति छोड़नी पड़ती है, न्याय छोड़ना पड़ता है, अच्छाई छोड़नी पड़ती है। सिर्फ पागल नशे में होते हैं कि कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी का भी पैसा मिल जाए, वह उसे लेकर छोड़ता है। यह क्या है?
आदमी का अहम है। अहम जितना ज्यादा सीमाबद्ध होता है और बड़ा चढ़ा होता है, आदमी उतना ही अधिक स्वार्थी होता चला जाता है।
मैं है मनुष्य और भगवान के बीच की दीवार।
मित्रों, स्वार्थी व्यक्ति को अपने आप से फुर्सत नहीं मिलती, उसके लिए समाज सेवा गई भाड़ में। समाज को हमारी सेवा करनी चाहिए।
बीबी की सेवा गई भाड़ में?
बीबी को हमारी सेवा करनी चाहिए।
यह सबसे सेवा चाहता है। इसका मैं इतना बड़ा होता है कि अपने मैं के लिए वह सबको इस्तेमाल करना चाहता है, यहाँ तक कि भगवान को भी मैं के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, सिद्ध पुरुषों को भी मैं के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, देवी देवताओं को भी मैं के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं इतना बड़ा हुआ, तृष्णाएं इतनी ज्यादा बड़ी हुई, अहंताएं इतनी ज्यादा बड़ी हुई कि स्वार्थ के अलावा आदमी दूसरी चीज का विचार ही नहीं कर सकता है।
मित्रों,
यही इंसान और भगवान के बीच की दीवार है। यदि हम कषाय कलंशों को कलुष को दूर कर सकते हो और अपने मैं को तुम में मिला सकते हो तो फिर मजा आ जाएगा।
फिर आप भगवान बन जाओगे, भगवान आप हो जाएगा। मित्रों,
कलुष की कषाय और कलंशों की थैली को तोड़ने के लिए जिस छेनी और हथौड़े को काम में लिया जाता है उसी का नाम है पूजा पाठ, उसी का नाम है योग और तप। अंगारे के ऊपर राख जमा होती है तो अंगारा काला हो जाता है और अपनी गर्मी खो बैठता है। अंगारे के ऊपर से जब हम राख की परत को हटा देते हैं तो अंगारा चमचमाने लगता है, अंगारा प्रकाशवान हो जाता है, अंगारा गर्म दिखाई देने लगता है। जब हम उसके ऊपर से राख को हटा देते हैं तब
राख माने अहम, जिसका अहम, जिसका स्वार्थ, जिसका पैसा, जिसकी भौतिक महत्वाकांक्षाएं जितनी अधिक बड़ी चढ़ी हैं, मित्रों
वह भगवान से उतना ही दूर है, राम के नाम से उतना ही दूर है।
क्यों?
क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता। समाज के लिए, देश के लिए, भगवान के लिए, अपनी जीवात्मा के लिए वह कुछ कर ही नहीं सकता। जो जितना ख्वाहिशमंद है, नीडी है, उसको अपनी जरूरतों को पूरा करने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तैयारियां करने के अतिरिक्त फुर्सत कहां मिलती है। समूचा जीवन अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में ही खत्म कर डालता है।
भगवान के प्रति समर्पण है योग, इसलिए मित्रों योग उसको कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर देता है और यह कहता है कि भगवान आपकी महत्वाकांक्षाएं हमारे साथ हैं, हम आपका हुक्म मानेंगे,
हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप हुक्म दीजिए। जिस काम के लिए आपने सुरदुर्लभ मानव जीवन दिया है उस काम के लिए हुक्म दीजिए, हम क्या चाह कर सकते हैं।
रोटी हमको मिल जाती है,
कपड़ा हमको मिल जाता है।
मित्रों,
रोटी आपको मिल जाती है बस, कपड़ा आपको मिल जाता है बस, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास बाकी जो समय बचता है, अकल बचती है, पैसा बचता है, बुद्धि बचती है, उसे अच्छे काम में खर्च कीजिए,
भगवान के लिए खर्च कीजिए। बेटे, यहाँ से चलता है योग। मित्रों,
योग जीवन की एक सीढ़ी है, ऊपर उठने का तरीका है, काम करने का ढंग है।
पूजा पाठ की किसी खास पद्धति का नाम योग नहीं हो सकता,
यह तो व्यायाम है। जिसको आप योग कहते हैं वह खालिस व्यायाम है।
नाक में रस्सी का डालना व्यायाम है, प्राणायाम व्यायाम है,
ये सभी शरीर के व्यायाम है, इंद्रियों के व्यायाम है। व्यायाम से हमारा शरीर मजबूत हो सकता है लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
आत्मा पर प्रभाव डालने के लिए जरूरी है कि हमारे मन का, सोचने का तरीका बदल जाए,
हम अपने लिए मांगने की अपेक्षा देने वाली वृत्ति को अपने जीवन में धारण करें,
देवता बने।
देव या देवता किसे कहते हैं? जो दिया करते हैं, जिनके मन में एक ही बात आती है कि हमें खर्च करना है। बेटे, भगवान ने आपको जो दिया हुआ है वह इतना ज्यादा दिया हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अतः हमारे पास जो दिया हुआ है उसे हम दूसरों को देना सीखें तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। मैं थोड़े से आपको नाम बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी मिली हुई चीजों को किस तरीके से खर्च किया और वे ऐसा काम करके दिखा गए जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
हजारी किसान का हजारीबाग। मित्रों, बिहार का एक किसान था, हजारी उसका नाम था। उसने आम का बगीचा लगाया।
उस गांव में आम का बगीचा नहीं था।
आम जब लगे, कच्ची अमियां जब आईं, तो गांव वाले आए।
उन्होंने कहा कि हमें कच्ची अमियां दीजिए, हम चटनी बनाएंगे।
लोग कच्ची अमियां ले गए, चटनी बनाई,
दूसरों ने खाए।
दूसरे घर वाले आए, हमको दीजिए, हम भी चटनी बनाएंगे।
सारा का सारा गांव चटनी बनाने के लिए आम की कैरियां मांगने के लिए आया। उसने कैरिया दी,
हरेक ने अपने घर में चटनी बनाई, जायका उठाया।
उसने कहा कि सारा गांव जिस चीज को मांगने के लिए मेरे घर आ सकता है वह मेरी संपत्ति तो नहीं है, मैंने तो केवल अपना पसीना बहाया है और पसीने की कीमत से उन लोगों को फायदा पहुंचाया है, मेरे पास संपत्ति नहीं है तो क्या हुआ, पसीने की संपत्ति क्या कम है, पैसा नहीं है तो भाड़ में जाए, पैसे से सिर्फ क्या होता है, पसीना मेरी संपत्ति है, पसीना बहाएंगे और लोगों की सहायता करेंगे और सेवा करेंगे।
मित्रों,
बिना पढ़ा लिखा एक किसान, बिना जायदाद वाला किसान अपने इलाके में चला गया। उसने अपने गांव वालों से कहा कि आप भी आम के पेड़ लगाइए। गांव वालों ने जाने क्या किया लेकिन आम के बगीचे लगाने के लिए किसान प्रार्थना करता रहा,
जाता रहा, आम के बगीचे लगाता रहा। उसके बच्चे बड़े हो गए,
आम के बगीचे स्वयं लगाना और लोगों से लगाने के लिए कहना बस एक ही काम में लगा रहा। सारी जिंदगी भर उसने बिहार के इलाके में 1000 आम के बगीचे लगाए।
इसलिए इस जिले का नाम लोगों ने हजारीबाग रखा, हजार बगीचे वाला जिला।
हजारीबाग नाम इसलिए भी रखा गया कि हजारी नाम के किसान ने अपनी मशक्कत से, अपने परिश्रम से और अपनी मेहनत से बगीचे लगाए। धन से नहीं, अकल से नहीं, अकल को भाड़ में जाने दो।
आपका पसीना चाहिए, श्रम चाहिए।
श्रम की शक्ति से किसान ने वह काम कर दिखाया जो ताजमहल की अपेक्षा जिसे बादशाह ने अपनी बीबी के लिए बनवाया होगा। हजारीबाग का जिला, जिसे हजारी किसान ने बनाया, इतना शानदार है कि उसका फायदा सभी ने उठाया।
उसका फायदा चिड़ियों ने उठाया, पक्षियों ने उठाया, जानवरों ने उठाया, इंसानों ने उठाया, बच्चों ने उठाया।
मेघ बरसे, बादल बरसे उन पेड़ों की वजह से और वह जमीन फसलदार हो गई और जिला धन्य हो गया।
बेटे,
मैं मशक्कत की बात करता हूँ। देवता उसे कहते हैं जिसके पास एक ही ख्वाब रहता है कि जो कुछ हमें मिला हुआ है उसको हम भगवान के लिए और लोक मंगल के लिए कैसे खर्च कर सकते हैं।
लोक मंगल माने भगवान।
भगवान आपसे मांगता है कि जो कुछ भी आपके पास है उसे निकालिए। नहीं साहब, हम देना नहीं चाहते, हम तो मांगने वाले हैं, हम तो पंडे हैं। पंडे उसे कहते हैं जो कहता है चलिए साहब,
हमारे घर पर चलिए, हम आपको ठहराएंगे, आपको गंगा जी नहलाएंगे आदि।
हम आपके यहाँ नहीं जाते, हम तो धर्मशाला में ठहरेंगे। अरे यजमान, हम आपसे मांगते नहीं है। अरे भाई, हम आपके यहाँ नहीं जाते।
वह चाहता है कि आप उसे कुछ दीजिए। मित्रों,
अगर आप निगेटिव हैं तो भगवान आपसे दूर भागेगा, जैसे कि यजमान पंडे से दूर भागते हैं। पंडे से आपको नफरत है।
मांगने वाले मनोकामना लेकर के आएंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे वही मांगेंगे।
भिखारी के हिस्से में एक ही चीज आती है और उसका नाम है नफरत।
भिखारी बनकर आप कहीं भी जाएंगे आपको नफरत मिलेगी।
भगवान के पास जाइए, संत के पास जाइए, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आप नफरत ले करके आएंगे और जहाँ आप देने के लिए जाएंगे वहाँ से भगवान का प्यार और अनुग्रह ले करके लौटेंगे। हमारी परंपरा है कि जब हम मंदिरों में जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। मंदिरों में आप कभी भी खाली हाथ मत जाना।
फूल लेकर जाना, पत्ती लेकर जाना, एक नया पैसा चढ़ा देना, पर खाली हाथ कभी मत जाना।
इससे भगवान नाखुश होते हैं कि कैसा दुष्ट है जो खाली हाथ आया है।
देवता बने, भिखारी नहीं। मित्रों, भगवान की भक्ति का तरीका है देवता बनना।
देवी देवता उसे कहते हैं जो देने के लिए तत्पर है, जिसके मन में एक ही उमंग आती रहती है कि हम अपनी जिंदगी में समाज को कुछ देकर के जाएंगे। देने के लिए आपके पास क्या चीज नहीं है? मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपका शरीर तो है, आपके पास पैसा नहीं है, अकल नहीं है, चलिए कोई हर्ज की बात नहीं है। कबीर के पास पैसा था, गांधी जी के पास पैसा था,
समर्थ गुरु रामदास के पास पैसा था,
रामकृष्ण परमहंस के पास पैसा था, ईसा मसीह के पास पैसा था। किसके पास पैसा था? पैसा डाकुओं के पास है, चोरों के पास है, नेताओं के पास है, जो विलासिता के लिए पागल हो रहे हैं, जो हवस के लिए पागल हो रहे हैं। इन पैसे वालों ने क्या कर लिया है? नहीं महाराज जी, हमको पैसा दिलवा दीजिए, हम दुनिया की सेवा करेंगे।
बेटे,
पैसे से सेवा नहीं होती और कभी कोई कर भी नहीं सकता। गांधी जी के पास पैसा था? नहीं महाराज जी।
पर हमको खूब पैसा दिलवा दीजिए, फिर हम भजन करेंगे, मंदिर बनवाएंगे।
भाड़ में जाने दे अपना मंदिर, बिना पैसे की सेवा कर।
मथुरा की पिसनहारी की कथा। मित्रों, सेवा कैसे होती है अगर यह देखना हो तो मथुरा जाइए और पिसनहारी का कुआं देख करके आइए। एक महिला थी, चक्की पीसती, चक्की पीसने से पैसे मिलते,
उसमें से दो पैसे रोज, एक पैसा रोज जमा करती रही। जमा करते करते उसके मिट्टी के दो घड़े पैसों से भर गए। बुढ़िया हुई तो उसने गांव वालों को बुलाया और कहा हमने ईमानदारी का पैसा, मशक्कत का पैसा, एक एक पैसा जमा करके रखा है, इसको आप किसी अच्छे काम में लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि इस गांव में कुआं नहीं है, अतः तेरे पैसे से सड़क किनारे एक कुआं बनवा देते हैं।
अच्छा, बनवा दीजिए। उस पैसे को लेकर गांव वालों ने गांव के बाहर सड़क के किनारे पक्का कुआं बनवा दिया।
उस जमाने में 500 रुपये में पक्के कुएं बन जाते थे, अब तो 5000 में भी नहीं बनते।
500 रुपये में एक पक्का कुआं बना दिया।
कुएं का पानी ऐसा निकला, ऐसा शानदार पानी निकला कि हमारे मथुरा इलाके में और कहीं नहीं है।
मित्रों,
हमारे इस मथुरा इलाके में नमकीन पानी है, खारा पानी निकलता है। 80 फुट का बोर हमने कराया है, वहाँ भी खारा पानी है, सारी बस्ती में खारा पानी है।
बस एक ही कुआं है, पिसनहारी का कुआं,
उसमें से मीठा पानी निकला है। दूर दूर के आदमी, बीमार आदमी दवाई लेने की बजाय मीठा पानी आकर के ले जाते हैं।
टीबी
के मरीज, दूसरे मरीज, तीसरे मरीज, टाइफाइड के मरीज सभी यही कहते हैं कि अरे भाई
वहाँ का पानी पिलाओ, पिसनहारी के कुएं का पानी लाओ। लोग बैलगाड़ियाँ लेकर सवेरे आते हैं, बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती है, हम पानी लेकर के जाएंगे। पिसनहारी वाले कुएं का इतना मीठा पानी है, कभी आप वहाँ जाएं तो मथुरा दिल्ली वाली सड़क पर 3 मील आगे पिसनहारी का कुआं आपको मिलेगा।
अब किसानों ने उसके आसपास की सारी जमीन में आम के बगीचे लगा दिए हैं। पिसनहारी के कुएं के आसपास लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, बरातें ठहरती हैं, टेंट लगा लेते हैं, अच्छी हवा के लिए बीमार चले आते हैं और पड़े रहते हैं, पिसनहारी के कुएं का पानी पीते रहते हैं।
मित्रों,
मैं यह कह रहा था कि आज तरह तरह की चीजें जमा करने की अपेक्षा आप विचार करें कि जो कुछ हमारे पास है उसे लोकमंगल के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, श्रेष्ठ कामों के लिए खर्च करेंगे,
तब मैं आपको देवता कहूंगा।
जिस गांव में हम रहते थे वहां हमारे पास 80 बीघा जमीन थी जो हमारे कास्ट की थी। उस गांव में उस समय के 5,000 रुपये बीघा की जमीन है।
नहरी गांव है, हमेशा कीमती फसल उगाते हैं।
सारा का सारा गांव नहरों की वजह से हरा भरा रहता है। जब हम यहां आने लगे तो अपने गांव के लिए स्कूल बनवा दिया।
उस गांव में हम केवल 3 आदमी हिंदी मिडिल तक पढ़े हुए थे।
अब उस गांव में चमारों की, धोबियों की, जुलाहों की, भंगियों की और काछियों की 200 के करीब लड़कियों ने मैट्रिक पास कर लिया है, हायर सेकेंडरी पास कर लिया है, अब तो कॉलेज बन गया है।
अब 3-4 हजार विद्यार्थी सारे इलाके के पढ़ते हैं, जबकि पहले अपने गांव में हम 3 आदमी ही मिडिल तक पढ़े हुए थे। अब तो उसका विस्तार होता चला गया।
क्या है हमारी वसीयत?
मित्रों,
उस गांव में हमारे घर वालों ने कहा, खानदान वालों ने कहा कि यह जमीन हमें दे जाइए। हमने कहा नहीं, आप में से कोई लंगड़ा हो तो हमारे सामने आए,
कोरी हो तो हमारे सामने आए, अंधा हो तो हमारे सामने आए, वरन अपने हाथ पांव से कमाए।
हमारे बाप कमाकर गए थे और इसको हमने अपने भगवान के लिए, गुरु के लिए छोड़ दिया। उस जमीन पर हमने कॉलेज बना दिया है।
हम यहाँ पर खाली हाथ आए, हमारे पास अक्ल है, चोरी चालाकी वाली नहीं।
हमारी अक्ल को आप कहीं गिरवी रख दें। हमने अब तक जितना लिखा है, अगर उसकी रॉयल्टी ली हुई होती तो लाखों की रॉयल्टी होती। जवाहरलाल नेहरू को उनकी लिखी पुस्तकों के ऊपर रॉयल्टी मिलती है और उनके बच्चों को पैसा मिलता है। हमने भी अपनी किताबों पर रॉयल्टी ली होती तो अब तक लखपति होते और हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाती।
लेकिन हमने अपनी अक्ल अपने गुरु को सौंप दी, अपना पैसा गुरु को सौंप दिया, अपना शरीर गुरु को सौंप दिया। मित्रों, आपको मालूम नहीं, हमारी वसीयत है कि मरने से पहले हमारा दिल निकाल लिया जाए, ताकि यदि किसी का दिल कमजोर हो गया हो तो उसको लगाया जा सके। हमारी वसीयत है कि मरने के पहले हमारे गुर्दे निकाल लिए जाएं, ताकि जिनके गुर्दे डैमेज हो गए हैं उनको लगाए जा सकें। हमारी वसीयत है कि हमारे मरने से पहले हमारी दोनों आंखें निकाल ली जाएं, ताकि जिनकी आंखों में लगाया जा सकता हो उनको लगा दी जाएं।
हमारे शरीर में 6 लीटर खून है जो बहुत साफ है, इसमें कोई खराबी नहीं है और यह किसी को भी लगाया जा सकता है, किसी के भी काम आ सकता है।
हमारी वसीयत है कि हमारे मरने से पहले हमारा खून निकाल लिया जाए और जिसको जरूरत हो उसको लगा दिया जाए।
हमारी वसीयत है कि हमको जलाया नहीं जाए, हमको किसी गोबर के गड्ढे में गाड़ दिया जाए, ताकि जो कटा फटा शरीर है उस कटे फटे और टूटे फूटे शरीर को मिट्टी के साथ मिलकर खाद बनाया जा सके, उसे किसी किसान के खेत में डाल दिया जाए, बगीचे में डाल दिया जाए, ताकि वहां से भरपूर फसल पैदा की जा सके, हर एक चीज पैदा की जा सके। जिस मुल्क से हम प्यार करते हैं, जिस संस्कृति से हम प्यार करते हैं, उसकी लकड़ी हमारे जलाने के काम आवे। नहीं बेटे, हमारे शरीर को जलाने के लिए लकड़ी काम आवे, उससे अच्छा है कि ठंडक से सिकुड़ने वाले लोगों के लिए वह काम आवे।
हमने भगवान को मोल ले लिया। मित्रों,
हमने सारी जिंदगी भर दिया है, उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जिसको हमने दिया उस गुरु को हम भगवान कहते हैं। हमने हमेशा एक ही विचार किया है कि हम आपको दे सकते हैं,
इसलिए हमने अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने गुरु के सुपुर्द कर दी।
इसका परिणाम क्या हुआ?
परिणाम यह हुआ कि हमने अपने गुरु को मोल ले लिया।
हमको जो आवश्यकता पड़ी है, पड़ी नहीं है, वरन उसी के लिए जरूरत पड़ी है, उसकी सारी की सारी चीजें हमको मिलती चली गईं।
विद्या,
विद्या हमारे पास बहुत है, इतनी विद्या है कि हमने वेदों के भाष्य किए। लोगों को विश्वास नहीं होता कि क्या कोई आदमी इस जमाने में वेदों का भाष्य कर सकता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं। देखिए, क्या कोई 18 पुराणों का भाष्य कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता।
मित्रों, पुराणों को लिखने में दो आदमी सम्मिलित थे, व्यास जी और गणेश जी।
इन्हें लिखने में दो आदमियों की शक्ति इस्तेमाल हुई।
व्यास जी बोलते गए थे और गणेश जी लिखते चले गए थे। उन्होंने केवल पुराण लिखे थे, वेद नहीं लिखे थे।
वेदों का भाष्य व्यास जी ने नहीं किया था, लेकिन जो काम व्यास जी न कर सके, जो व्यास जी और गणेश जी दोनों की मदद से हुआ था, हमने अकेले ही किया।
सात ऋषि वेद पढ़ाते थे।
सात ऋषियों को हमने परिश्रम से पढ़ा है, उतने ही परिश्रम से जितना परिश्रम वेदों का भाष्य करने में किया है।
सात ऋषि एक ओर, व्यास जी एक ओर, सारा का सारा जितना भी भारतीय संस्कृति का वाण्मय है, उसका इतना सरल भाष्य हमने अकेले किया है।
क्या यह हमारा ज्ञान है? नहीं बेटे,
यह हमारे गुरु का ज्ञान है। इसका श्रेय हमको मिला है, प्रशंसा हमको मिली है। गुरु जी का नाम नहीं छपा, हमारा नाम छपा।
हमने अपनी अक्ल उनको दी है, उन्होंने अपनी अक्ल हमको दी है, हम दोनों शामिल हैं।
मित्रों, हमको जब जब जरूरत पड़ी है, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको हर एक चीज मिली है।
जब हम विदेश जाने लगे तो हमने यह कहा कि आप हमको संसार भर में भेजते हैं, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में हम बोल नहीं सकते, तब आप हमको क्यों भेजते हैं? हमको हिंदी आती है, अंग्रेजी हम बोल नहीं सकते और वहां तो अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा। जब मुझे भेजा गया और मैं फ्रांस गया, फ्रांस में अंग्रेजी नहीं चलती, फ्रांसीसी अंग्रेजों से बड़ी घृणा करते हैं, जैसे अभी यह हिंदू मुस्लिम में हो रही है, ऐसे ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में बहुत रही है। आप अंग्रेजी में बोलिए तो फ्रांसीसी आपको जवाब नहीं देंगे, वे अंग्रेजी जानते व समझते हैं, लेकिन फ्रांस में आपको फ्रेंच के बिना काम नहीं चल सकता। जर्मनी में आप जाएंगे तो जर्मन भाषा बिना आपका काम नहीं चल सकता।
पिछड़े हुए मुल्क जिनमें अफ्रीका के देश सम्मिलित हैं, वहां आप जाइए तो स्वाली के बिना वहां की भाषा में बात नहीं कर सकते।
वे न अंग्रेजी समझते हैं और न आपकी हिंदी समझते हैं, आप किस तरीके से बात करेंगे? आपको वहां की भाषा में बात करनी पड़ेगी।
मित्रों,
मैंने गुरु से कहा कि देखिए, आप मुझे विदेशों में भेजते हैं,
हिंदी जानने वाला मैं विदेशी भाषा में कैसे बोलूंगा?
मैं तो पानी भी नहीं पी सकूंगा, कैसे काम चलेगा? किसकी शरण में आप हमें भेजते हैं?
उन्होंने कहा कि हमारी जीभ लेकर के चले जाओ।
उन्होंने अपनी जीभ काटकर हमारी जीभ में चिपका दी और उस जीभ को लेकर हम सारी दुनिया में बोलते हुए चले गए।
मित्रों, हमारे गुरु की संपत्ति हमारी संपत्ति है,
गुरु की अक्ल हमारी अक्ल है, उनका पैसा हमारा पैसा है। हमने अपना 1,50,000 रुपया एक बार दिया था और वह जमीन जो देकर आए हैं, आप उसको 5,000 रुपये बीघे के हिसाब से 4,00,000 रुपये की मान सकते हैं।
इस प्रकार कुल मिलाकर 5,50,000 रुपये हमने दिया है, लेकिन गुरु ने हमको कितना दिया है? गायत्री तपोभूमि बनाने के लिए हमारे गुरु ने हुक्म दिया था, तो हमने कहा अच्छा, गायत्री तपोभूमि हम बना सकते हैं, लेकिन हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं।
अगर किसी से मांगना पड़ा तो हम नहीं बनाएंगे।
अच्छा जा, मांगना मत, बिना मांगे बनाना।
वह इमारत जो उस जमाने में 10,00,000 रुपयों में बनाई थी, मैं समझता हूँ कि यदि आज बनाई जाए तो 30-40,00,000 रुपये से कम में नहीं बनेगी।
इसको बनाए हुए हमको 3-4 वर्ष हो गए। जरा आर्किटेक्ट को बुलाइए, इंजीनियर को बुलाइए और कहिए कि साहब,
इस इमारत में कितना पैसा लग जाएगा?
साहब,
इतना पैसा लग जाएगा।
समर्पण का नाम है योग। मित्रों, हमने 1,000 कुंडिया एक यज्ञ किया था, जिसमें 4,00,000 आदमी हिंदुस्तान भर से बुलाए गए थे। वे 4,00,000 आदमी 5 दिन तक ठहरे थे। हमने खाने पीने का सारा इंतजाम किया था। 20,00,000 आदमी सवेरे और 20,00,000 आदमी शाम को। 40,00,000 आदमियों को एकदम फ्री में खाना खिलाया था और फ्री में ठहराया था। फ्री में बिजली दी थी। सारे के सारे इंतजाम फ्री में थे। इसमें हमारा 50,00,000 रुपया खर्च हुआ था।
अपने 50,00,000 रुपये की कीमत में हमको करोड़ों रुपये मिले, यह क्या था? हमने अपने आप को नाले के तरीके से मिला दिया है।
किस में?
गंगा में। कौन सी गंगा?
भगवान में।
हमारे पास जो कुछ भी था, कम से कम और अधिक से अधिक, बिना चू चपड़ के हमने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। परिणाम क्या हुआ?
उसका परिणाम यह हुआ कि उनका जो कुछ भी था, वह सब हमको देते हुए चले गए।
इसका नाम योग है। स्वेच्छा से कष्ट सहना है तप।
मित्रों,
योग के अलावा एक और बात रह जाती है और उसका नाम है तप। तप किसे कहते हैं? खाना न खाना, पानी न पीना, धूप में खड़े रहना, जमीन पर सोना, यही तो तप होता है ना? किसे कहते हैं तप?
बेटे, इसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है, एक उद्देश्य छिपा हुआ है। इसका उद्देश्य है मुसीबत उठाने के लिए स्वेच्छापूर्वक तैयार हो जाना।
एकादशी के दिन उपवास रखते हैं। क्यों साहब, आपको खाना मिलता है कि नहीं मिलता?
हाँ साहब,
खाना तो है। फिर क्या बात है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं? यह क्या है?
अपनी इच्छा पूर्वक मुसीबत मोल लेना।
आज क्या है?
आज तो निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी को पानी पियेंगे।
नहीं साहब,
पानी नहीं पियेंगे।
आप पानी क्यों नहीं पीते हैं? पानी तो घर में है। लीजिए, हम लाते हैं पानी, आप पियेंगे कि नहीं?
नहीं साहब, नहीं पियेंगे।
क्यों?
क्योंकि आज निर्जला एकादशी है।
बेटे,
इससे क्या मतलब है आपका?
इच्छा से, स्वेच्छा पूर्वक, खुशी से अपने ऊपर मुसीबत बर्दाश्त करना।
एक तो मुसीबत वह होती है जो जबरदस्ती हमारी गलती की वजह से, अकर्मण्यता की वजह से, हमारे दुष्कर्मों की वजह से हमारे ऊपर आती है।
वह तो दुखदायी मुसीबत होती है।
वह तो असहनीय हो जाती है। उसको सहने में हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन एक मुसीबत ऐसी होती है जिससे खुशी हासिल होती है।
मसलन, एकादशी के दिन उपवास करना, निर्जला एकादशी को पानी न पीना।
उदाहरण के लिए, जब हम आपको अनुष्ठान कराते हैं तो आपके ऊपर कई तरह के बंधन लगा देते हैं, जैसे यह मत खाना, यह करना, जमीन पर सोना, नंगे पैर चलना, ऐसे करना, माघ के महीने में ठंडे पानी से नहाना और गर्मी के दिनों में धूप में नंगे पैर चलना आदि। इसका क्या मतलब है?
आपको हम यह अभ्यास कराते हैं कि आप इच्छापूर्वक मुसीबतें मोल लेने के लिए तैयार हो जाइए।
स्वेच्छापूर्वक मुसीबतें लेने के लिए, किन्हीं ऊंचे सिद्धांतों के लिए, बिना कारण नहीं, बिना वजह नहीं, आपको हम अभ्यास कराते हैं।
मित्रों,
वह इसलिए कि जब कभी आप श्रेष्ठ राह पर चलेंगे तो जिंदगी में ऐसा मौका जरूर आएगा जब आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, महामानव हुए हैं, योग्य पुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने खुशहाली की जिंदगी नहीं जियाई है, ऐयाशी की जिंदगी नहीं जियाई है, मालदारी की जिंदगी नहीं जियाई है। वे अमीर होकर नहीं जिए हैं, बड़े आदमी होकर नहीं जिए हैं, बल्कि मुसीबत अजदा होकर के जिए हैं। उन्होंने मुसीबतों को जानबूझ करके अपने ऊपर बुलाया है और अपने ऊपर मुसीबत बुलाने की वजह से उनका नाम तपस्वी कहलाया। तपस्वी होने से क्या फायदा हुआ है?
बेटे,
तप कहते हैं गर्म करने को। अपने आप को गर्म करने का नाम है तप। गर्म करने से हर चीज मजबूत हो जाती है। जैसे जो ईंटें कच्ची हैं, और जब कच्ची ईंटों से हम मकान बनाते हैं तो मकान बड़ा कमजोर होता है, और जब हम ईंटों को पका डालते हैं, भट्टे में डालते हैं, गर्म करते हैं, तब ईंटें ऐसी मजबूत हो जाती हैं कि उनका बरसात क्या बिगाड़ सकती है और धूप क्या बिगाड़ सकती है। सैकड़ों वर्षों तक वह वैसे ही खड़ी रहती है, जबकि कच्ची ईंटें बहकर खत्म हो जाती हैं। यह क्या कहलाती है?
यह कहलाती है तपस्या।
तपने का नाम है तपस्या।
मित्रों,
हकीम लोग भस्मे बनाते हैं। हकीम जी, क्या बना रहे हैं?
अरे साहब,
लौह भस्म बना रहे हैं। तो यह लौह भस्म क्या भाव बिकेगी?
साहब, यह तो 20 रुपये तोला बिकेगी।
वाह साहब,
लीजिए, हम आपको 4 आने तोला लोहा देते हैं।
नहीं साहब, हम तो यह भस्म बना रहे हैं।
भस्म किसे कहते हैं? बेटे, लोहे को जलाते हैं, इसको हम तपाते हैं। ताप देने के बाद में जब भस्म बन जाती है तो वह बड़ी कीमती बन जाती है।
धातुएं कच्ची होती हैं। कच्ची धातु कैसे निकलती है?
कच्चा लोहा कैसे निकलता है?
बेटे,
कच्चा लोहा खदान से जो निकलता है, मिट्टी मिला हुआ होता है, फिर उसे भट्टियों में ले जाया जाता है।
आप भिलाई में जाइए, टाटा नगर में जाइए, रुड़केला में जाइए और देख करके आइए। कच्चे कोयले को मिट्टी, मिले हुए कोयले को आग में झोंक देते हैं।
आग में झोंक देने के बाद क्या होता है? वह गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में मिट्टी अलग हो जाती है और पक्का लोहा अलग हो जाता है। पक्के लोहे को दोबारा गर्म करते हैं, तिबारा गर्म करते हैं, चौबा गर्म करते हैं। जितनी बार ज्यादा गर्म किया जाता है, जितना उसको टेम्परेचर दिया जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है।
जितना ज्यादा उसको टेम्परेचर लगाते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छा लोहा बनेगा।
मित्रों, पानी को गर्म करने के बाद उसमें शक्ति आ जाती है।
ठंडे पानी में शक्ति नहीं आती।
कच्चा आम खट्टा होता है, लेकिन जब उसे गर्मी में दबा देते हैं तो पककर वह मीठा हो जाता है। और बेटे, वेल्डिंग कैसे होती है?
लोहे के 2 टुकड़े बराबर रख करके आग लगाते हैं, फिर चाहे वह बिजली से हो, आग से हो या गैस से हो, हम उसमें आग लगाते हैं और दोनों को इतना गर्म करते हैं कि दोनों पिघल कर एक हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है?
वेल्डिंग हो रही है। वेल्डिंग में लोहा गर्म हो करके आपस में इतना चिपक जाता है कि उसे हाथ से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी किसी चीज से काट लीजिए, पर वेल्डिंग किया हुआ लोहा छूटेगा नहीं।
क्यों?
क्योंकि वेल्डिंग कर दी गई है।
मित्रों,
वेल्डिंग कर देने से क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि उसे तपा दिया गया है।
तपा देने से क्या मतलब है? तपा देने से वही मतलब है जो हम आपको इस योग साधना शिविर में सिखाना चाहते हैं। हम आपको गर्म करना चाहते हैं, आपको तपाना चाहते हैं और आपको मुसीबत में धकेलना चाहते हैं। ऐसी मुसीबत में धकेलना चाहते हैं जो आपको प्रारब्धों के फलस्वरूप से नहीं, मजबूरी से नहीं, वरन जो अपनी इच्छा से मांगी गई हो कि लाइए साहब,
मुसीबत लाइए, मुझे मुसीबत दीजिए। जिस दिन आप मुसीबत मांगेंगे उस दिन क्या हो जाएगा?
आपकी और आपके भगवान की वेल्डिंग हो जाएगी, दोनों की वेल्डिंग हो जाएगी और आपको चिपका दिया जाएगा,
आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाएंगे।
जिस दिन आप यह कहेंगे कि संपत्ति नहीं, खुशहाली नहीं, यश नहीं, वैभव नहीं, हमको मुसीबत दीजिए।
मुसीबत मांगने वाले का नाम तपस्वी है। बेटे,
बिजली के बल्बों में छोटा सा तार होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं। यह जरा सा होता है लेकिन जब हम इसे तपाते हैं, इसके भीतर आग लगा देते हैं, तो सारे के सारे कमरों में यह रोशनी करना शुरू कर देता है। यह तपस्वी है। दीपक को हम जब जलाना शुरू करते हैं, तेल में भीगी हुई रुई की बत्ती को जलाना शुरू करते हैं, तो दीपक चारों ओर प्रकाश पैदा करना शुरू कर देता है। यह क्या है? यह तप है। और क्या हो सकता है तप?
तप का अर्थ है मुसीबतें।
मुसीबतें उठाने के लिए जब स्वेच्छा से हम तैयार हो जाएंगे तो हमारा नाम तपस्वी हो जाएगा।
जब हम तपस्वी हो जाएंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तप की महिमा अपरंपार। मित्रों,
तप की महिमा से सारे का सारा भारतीय वाङ्मय भरा हुआ है। अध्यात्म में सिवाय तप के और कुछ है ही नहीं। सातों ऋषि क्या करते रहे? तप करते थे।
ध्रुव जी क्या करते थे?
तप करते थे।
अच्छा, पार्वती जी ने ब्याह कर लिया?
हाँ। शंकर भगवान तो मना करते थे कि हम तो ब्याह नहीं करेंगे।
तो क्या शंकर भगवान को जबरदस्ती तैयार करा लिया कि आपको ब्याह करना पड़ेगा?
नहीं।
फिर पार्वती जी ने क्या काम किया था? पार्वती जी ने महादेव जी को मिठाई खिलाई थी?
नहीं महाराज जी,
मिठाई नहीं खिलाई।
तो क्या किया था? तप किया था। तप करने के बाद उन्होंने बताया था कि हम सोने के हैं और आप लोहे के हैं, हम स्टील के हैं, आप हमसे शादी कर सकते हैं। तप की आग बहुत प्रचंड होती है। तप की आग में अपने को झोंक कर बेटे
भागीरथ गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाए थे।
क्या किया था उन्होंने? तप किया था। जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने तप किया था। दधीची, जिन्होंने तप के द्वारा अपनी हड्डियों को मजबूत बनाया और उनकी हड्डियों से बने वज्र से राक्षस मारा गया था। इतना बल कहाँ से आया था? तप से आया था।
मित्रों, कल मैं आपको अगस्त्य ऋषि का किस्सा सुना रहा था। वे तीन चुल्लू पानी में समूचा सागर पी गए थे।
इतनी ताकत उनमें कैसे आ गई थी? वे क्या खाते थे?
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाते थे। फिर क्या करते थे? तपस्वी थे। उनकी यह तपस्या की शक्ति थी। तप की शक्ति से बेटे विश्वामित्र ने नई सृष्टि बना दी थी।
तप की शक्ति से जाने क्या क्या होता रहा है।
दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनको हम सामर्थ्यवान कह सकते हैं, शक्तिमान कह सकते हैं, आत्मबल संपन्न कह सकते हैं, उनके पास एक ही हथियार था, तप।
तप किस तरीके से करेंगे? तप उसी तरीके से करेंगे जैसे कि प्रत्येक तपस्वी को करना पड़ा।
आपको भी वैसा ही करना चाहिए।
मुसीबतों को खुशी से अंगीकार करने के लिए जब हम आपको पेश करते हैं तब आप तपस्वी होते हैं।
मित्रों, तप के लिए पहला वाला मोर्चा और पहला वाला निशाना हमारी इंद्रियां होनी चाहिए। हमारी इंद्रियां हमारी बहुत सारी शक्ति खराब करा देती हैं, खर्च करा देती हैं।
जैसे सुराखों वाले बर्तन में गाय दूध देती रहती है और उन सुराखों से सारा दूध टपक जाता है,
कुछ पल्ले नहीं पड़ता, हमारे पास कुछ नहीं बचता,
हम छूछ रह जाते हैं।
इसलिए पहले हमको हमारे जीवात्मा के भीतर बल की वृद्धि हो, इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन में जितने भी सुराख हैं उन सुराखों को बंद करें।
इन सुराखों को यदि आप रोक देंगे तो आपकी अनावश्यक शक्ति जो खर्च होती रहती है, जिसे आप भजन से भी कमाते हैं, दूसरे तरह से भी कमाते हैं, तीसरे तरह से भी कमाते हैं, भगवान की दया से भी कमाते हैं, संत पुरुषों के अनुग्रह से भी कमाते हैं, और वह सारी की सारी खर्च हो जाती है, बंद हो जाएगी। इन सुराखों में जो इंद्रियों की सुराखें हैं उनका संबंध स्थूल शरीर से है।
हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर।
तीनों शरीरों को हमको गर्म करना पड़ता है, तपाना पड़ता है, उनके छिद्रों को बंद करना पड़ता है, कमजोरियों को दूर करना पड़ता है, ताकि हमारा योग का उद्देश्य पूरा हो सके, ताकि हम उसमें ठीक तरह से मिलाए जा सकें।
यही योग और तप का उद्देश्य है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।